का था, रूप वही रूप नया।
धीरे धीरे स्वप्न के समान वे सब बातें निशिकांत को फिर याद आने लगीं। धुंधले धुंधले चित्र उसके सामने शून्य में तिमिरों की तरह उड़ने लगे। उसे याद आया किसी ने उसे बुजदिल कहा था। वो उसी तरह लेटे लेटे बड़बड़ाया, क्या मैं बुजदिल हूं? पास ही कोई बोल उठा, बेशक तुमने जो रास्ता पकड़ा है वो बुजदिलों का रास्ता है। निशिकांत चौंक सा उठा, तुम फिर आ गए? दूसरा निशिकांत हंसा, मैं जाता ही कहां हूं, सदा तुम्हारे भीतर ही तो रहता हूं। मैं कहता हूं कि ये रास्ता तुम्हें सुख नहीं पहुंचा सकता, तुम्हारे मन की वासनाओं को शांत नहीं कर सकता। निशिकांत फुसफुसाया, मैं समझा नहीं। समझे नहीं? दूसरा निशिकांत जोरों से हंस पड़ा। वो हंसी बड़ी तेज आवाज पैदा करती कमरे में गूंज उठी। उसे लगा जैसे कोहरे में सब धुंधला नजर आता है, उसी तरह इस आवाज में भी एक अस्पष्ट स्वर मात्र है, और ये अस्पष्टता उसके दिल में एक अजीब भय पैदा करती जा रही है। आवाज फिर गूंज उठी, तुमने मकड़ी का जाला देखा है? हाँ देखा तो है, हमारी लापरवाही से न जाने कितने जाले हमारे घरों के कोनों में लग जाया करते हैं, और उसमें फंसकर आजादी के लिए तड़पती हुई मक्खी को भी देखा है। निशिकांत बेबसी में भी हंसा। हाँ बचपन में न जाने कितनी बार फड़फड़ाती मक्खी को देखकर चाहा था कि उसे निकाल दूं, लेकिन कौतूहल ने कभी हाथ नहीं उठने दिया, और देखते ही देखते वो मक्खी मकड़ी से निगल ली गई। निशिकांत की हंसी विषाद में बदलती गई, लेकिन वो आवाज उसी तरह उग्रता से बोलती गई, अच्छा तो सुनो, ये मनुष्य जो है ना उसी मक्खी के समान है, और तुम भी। जानता हूं, निशिकांत ने कहा, लेकिन वो जाला? बुद्धि के तर्क और अंतरात्मा की पुकार, ये सब मकड़ी के जाले ही तो हैं। इनमें फंसकर मनुष्य मक्खी की तरह आजादी के लिए तड़पता रहता है, और ओह, निशिकांत एकदम लापरवाही से बोल उठा, मैं समझा ये मकड़ी तुम ही हो जो मेरे लिए जाला पूरती रहती हो और मुझे उसमें फंसाकर अपनी क्षुधा शांत करती रहती हो। इस अचानक पैदा हुई लापरवाही ने उसकी वाणी में तेजी भर दी। वाणी की तेजी ने शरीर में कंपन पैदा कर दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें एकदम चमक उठी और तेजी से उठने की चेष्टा करने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी चेष्टा में गति पैदा हुई वो कांप उठा। उसके चारों ओर रात्रि का गहरा अंधकार फैला हुआ था। कहीं दूर कुत्ते किसी अस्पष्ट ध्वनि पर चौंक कर भौंक उठते थे। खिड़की से झांकते हुए नीले आसमान के सफेद और सुनहले तारे घोर निराशा में आशा के दीपक की तरह झिलमिल कर रहे थे। उसने दोनों हाथों की हथेलियों से अपने आंखों को मला और फिर अपने चारों ओर शून्य अंधकार में ताका, लेकिन जैसे जैसे उसे समझ आती गई उसका मन ग्लानी से भरता गया। वो होश में आकर भी उस अदृश्य आवाज के प्रभाव को जो मकड़ी की तरह उस पर जाला पूरती जा रही थी दूर न जा सका। अभी पहली संध्या को ही तो उसने यशोदा से वादा किया था, आज रात को जरूर आऊंगा। वो मुस्कुराई और उसकी लजीली आंखें किसी अज्ञात ज्योति से पूरित होती हुई नीचे की ओर झुक गईं। उसने फिर कहा, राह देखोगी? वो बोली, आएंगे तो राह क्यों ना देखूंगी भाई साहब। तभी जैसे इसने पूछना चाहा, तुम मुझे भाई साहब क्यों कहती हो? लेकिन अजाने क्या सोच समझकर वो चुप हो गया और फिर क्षण भर बाद बोला, ठीक है तो मैं जरूर आऊंगा। इसके अतिरिक्त और कुछ कहने को जैसे उसे कोई विषय मिल ही नहीं रहा था, और अचरज तो ये है कि उसकी आवाज बड़ी धीमी होती जा रही थी। इस धीमेपन पे उसे स्वयं विश्वास नहीं आ रहा था। यशोदा इतनी देर तक नीचे ही देखती रही, कभी आंख उठाकर सीधे देखा भी तो नहीं, केवल एक उड़ती नजर उस पर डाल सामने एक लैंप पोस्ट को देखने लगी। कोई उस समय होता तो संभव है यही जानता कि ये लड़की निशिकांत से जरा भी संबंध नहीं रखना चाहती। निशिकांत भी लैंप पोस्ट की दूसरी तरफ इस तरह खड़ा था मानो बड़ी व्यग्रता से उन मोटर और तांगे के निकल जाने की राह देख रहा हो जो किसी बारात के कारण रुक गए थे। दूर आगे से अंग्रेजी बाजे की तेज आवाज आ रही थी और एक छोटी सी भीड़ तांगों की दूसरी तरफ इस तरह झुकाई थी जैसे परनाले का मुंह बंद हो जाने पर पानी रुक जाता है। जैसे ही बारात आगे बढ़ी भीड़ भी तेजी से इधर उधर बिखर गई। निशिकांत भी तब लापरवाही से आगे बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते उसने पीछे की ओर देखा, तभी यशोदा ने भी उसी तरफ दृष्टि घुमाई। दोनों की आंखें मिली जैसे बिजली सी चमक गई। निशिकांत ने सोचा, सुंदर है। ये सोचते ही एक बार फिर उसके शरीर में मादकता उभर आई। हृदय में हल्का हल्का उल्लास उमड़ा, छाती में कंपन सा हुआ, परंतु मन न जाने क्यों भयातुर सा हो उठा। ये बात नहीं कि निशिकांत ने आज पहली बार ही जाना हो कि यशोदा सुंदर है। परिचय होने से बहुत पहले निशिकांत ने यशोदा को देखा था और माना था कि यशोदा सचमुच सुंदर है। उसके मुख का हल्का गुलाबीपन, आंखों की तरल मादकता, सुनहली लाली लिए ओठों पर सीधे संकेत करती हुई नासिका और सबसे अधिक लापरवाही से उड़ती हुई साड़ी के भीतर लंबे चिकने काले बाल, जो बंधन में भी असंयत। एक दिन ये सब देखकर वो कुछ विचलित हो गया था और धीरे धीरे वो विकलता इतनी तीव्र हो उठी थी कि चिल्ला उठा था, पापी कमीने, एक अपरिचित युवती के प्रति इतने गंदे विचार। तू धूर्त है, तू कमीना है, तू नीच है, तू निर्लज है। उसके हाथ में जो पुस्तक थी वो उसने जोर से फेंक मारी, फिर सीधा पलंग पर जाकर इस तरह लुढ़क गया जैसे बड़े दिनों का सूखा पेड़ अचानक हवा के तेज झोंके से पृथ्वी पर लुढ़क जाता है। पत्नी ने आकर पूछा, जी कैसा है? आंखें खोलकर पत्नी को उसने देख लिया पर कुछ बोला नहीं। पत्नी फिर बोली, मैं पूछती हूं, लेट कैसे गए? फिर आकर पास में बैठ गई, उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, उठो तो। तब निशिकांत की जी में आया, कह दे, अभागे नारी, मेरी विकलता का कारण तू है, तू है, तू है जिसने मुझे आग में हाथ देने को मजबूर किया है। लेकिन कहा उसने कुछ भी नहीं, उठकर बैठ गया, कपड़े उतार डाले, फिर बोला, चलो मैं खाना खाने आ रहा हूं। इसके बाद उस दिन के लिए निशिकांत जैसे सब कुछ भूल गया। वो उतावलापन, वो व्यग्रता, वो मादकता, सब न जाने की सोर उड़ गई। पहले भी उसके साथ ऐसा ही हो चुका था। यशोदा जैसी कितनी ही सुंदर असुंदर यौवन के भार से लचकती हुई युवतियां उसने देखी और देखकर उनको अपनी बनाने की तीव्र लालसा उसके मन में उठी। इंद्रधनुष के समान अनेक सुनहले और रुपहले चित्र उसके हृदयाकाश पर खींचते और जरा सी देर में पानी के बुलबुलों और ताश के पत्तों के महल के समान वो ढह जाते। जैसे नींद खुलने पर स्वप्नों की दुनिया उड़ जाती है ना, वैसे। तब उसका मन आत्मग्लानि से भर जाता और वो अपने आप को कोसना शुरू कर देता, मैं कितना नीच हूं, अपनी स्त्री के होते हुए दूसरी नारियों से मानसिक व्यभिचार करता हूं, मैं वासनाओं के जाल में फंसता जा रहा हूं, मुझे पाप पुण्य नीति नियम किसी का भी ध्यान नहीं है, मैं पापी हूं, मुझे आत्महत्या। आत्महत्या? हां आत्महत्या। लेकिन आत्महत्या भी तो पाप है। बेशक, वो दृढ़ता से कहता, आत्महत्या पाप है, लेकिन व्यभिचार उससे भी बड़ा पाप है। इसके बाद वो स्वयं ही बड़े जोर जोर से कांप उठता, सामने जो भी वस्तु होती उसे पैरों से बड़े जोर से ठोकर मारकर दूर फेंक देता और उलझी हुई तागों की कुकड़ी की तरह अपने विचारों के जाल में इस तरह फंस जाता कि उसे रास्ता ही नहीं मिलता। तब कभी कभी नीचे से आकर रजनी उसके पास बैठ जाती और प्रेम तथा स्नेह भरे स्वर में उलाहना देती, हर वक्त क्या सोचा करते हो, कभी बात ही नहीं करते। हठात वो झुंझलाहट भरी आंखें उसकी ओर उठाता तो लगता जैसे लंबे सफर की थकान से दर्द करते हुए शरीर को किसी ने अपने कोमल करों से धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया है। वो सजीव हो उठता जैसे फूल की पंखुड़ियां खुलती जा रही हैं। रजनी सुंदर है, सच? हां, उसकी आंखों में भी मद है, होठों पे लाली है और स्वर में कोमल मिठास। एकाएक वो बोल उठता, रजनी। रजनी पास खींचती और कहती, जी तुम सुंदर हो। ओह, रजनी मुस्कुरा उठती और निशिकांत तब एक दिन न जाने किस अज्ञात भाग्य रेखा ने निशिकांत के इस काल्पनिक जीवन में वास्तविकता के धुंधले चित्र बनाने शुरू कर दिए। उस दिन पूर्व के आकाश में प्रकाश के आगमन की सूचना मिल चुकी थी। धुंधली रोशनी बीच के रंगमंच पर बिखर चली थी। वातावरण में मंद मंद वायु हिलोरें ले रही थी और अधिकांश संसारवासी एक बार आंखें खोलकर फिर से निद्रा देवी की मद भरी हल्की हल्की थपकियों का शिकार होते जा रहे थे। निशिकांत उस समय हाथ में बाल्टी थामे अलसाई देह डेयरी की ओर से लौट रहा था। मस्तिष्क में रात के स्वप्नों की धुंधली सी याद बाकी थी। चारों ओर सन्नाटा अंगड़ाई तोड़ने लगा था। कुत्ते भौंकना बंद करके इधर उधर विश्राम की टोह में घूमने लगे थे। कुओं पर पानी भरने वाले या सैर के शौकीन बाबू या डेयरी से दूध लाने वाले आदमी हल्की हल्की पदचाप करते चले जा रहे थे। तभी सहसा पास की एक गलीचे से एक घोड़ी बड़ी तेजी से तूफान की तरह दौड़ती हुई आई और उसके पास से ऐसे निकल गई जैसे भूकंप का तेज धक्का बड़े जोर से गड़गड़ाहट करता हुआ निकल जाता है। वो संभले संभले कि वातावरण एक चीत्कार से भर गया। कोई बड़े जोर से रोया। कई आवाजें एक साथ कांप उठी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये सब एक क्षण में हो गया। दूसरे क्षण निशिकांत ने दौड़कर एक बालिका को उठाया जो बुरी तरह सड़क पर गिरकर चीख रही थी। उसके पास एक बाल्टी पड़ी थी जिसका सब दूध बहकर नाली में गिरता जा रहा था। दूध के साथ ही रक्त की एक पतली सी रेखा भी उसी तरफ बह जाने की चेष्टा में थी। निशिकांत ने बड़े स्नेह से उसे गोद में उठा लिया। बोला, तुम्हें चोट लगी है, रो मत, बस 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 चुप हो जाओ, कहाँ जाओगी? लेकिन बालिका थी कि रोए ही चली जा रही थी। उसकी आयु लगभग 7-8 वर्ष की होगी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आँखें, साधारण परंतु स्वच्छ कपड़े, जान पड़ता था किसी अच्छे घर की है। फिर पूछा, तुम कहाँ जाओगी, बोलो। इसी समय पीछे के मकान के किवाड़ बड़े जोर से खुले और कांपती हुई आवाज आई, शारदा, शारदा। गोद की बालिका और भी चीखी, शारदा, अम्मा। निशिकांत तब उसे गोद में लिए उसकी माँ के पास ले आया। बोला, घोड़ी की चपेट में आ गई है, चोट तो नहीं लगी? हाँ, देखता हूँ। वो अंदर चला गया। लालटेन के प्रकाश में उसने देखा बालिका के पैर में घोड़ी के नाल का एक अच्छा जख्म बन गया है। उसी जख्म से बहकर खून की धार सड़क पर बह चली थी। निशिकांत ने जब जख्म को संभाला, माँ ने चौके से आकर पुकारा, यशोदा, ओ यशोदा, अरे जल्दी उठ, देख तो शारदा को क्या हुआ। ऊपर से आवाज आई, हाँ क्या? माँ तेज हुई, हूँ क्या करती है यहाँ कर, देख बहन चीख रही है। क्या हुआ माँ? इस बार यशोदा हड़बड़ा कर उठ बैठी। नीचे भी आओ, निशिकांत ने कहा, आप घबराइए नहीं, घर में रेशम हो तो जरा फूंक लीजिए, मैं जख्म में भर देता हूँ, और देखिए दूध हो तो ले आइए। दूध? ओह, दूध ही तो ला रही थी, वो बिखर गया। खैर, आप रेशम फूंकिए, दूध का भी प्रबंध हो जाएगा। ये सब करते करते निशिकांत उस घर और घर वालों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने की चेष्टा करता रहा। उसने देखा, ये तो यशोदा वही लड़की है जिसे उसने अनेक बार सड़क पर देखा है और जिसे देखकर उसके मन में बार बार एक ही ख्याल उठा है कि वो सुंदर है, मोहक है, और इस समय अब तो आलस्य और अस्त व्यस्तता के कारण उसमें और भी मादकता समा गई है। जी जी, इस समय भी ऐसी बात? रेशम फूंकते फूंकते माँ बोल उठी, तुम ना आते तो जाने क्या हो जाता। जी, कहकर वो चौंका, क्या कहा आपने? उसकी ओर बिना देखे, बिना कुछ सुने वो बोलती रही, भगवान ने तुम्हें न जाने कहाँ से भेज दिया कि जी मैं तो दूध ला रहा था। यहीं रहते हो? जी हाँ। क्या करते हो? जी नौकरी करता हूँ। परमात्मा तुम्हें सुखी रखे, तुम तो बड़े दयालु हो, नहीं तो कौन किसको उठाता है। जी जरा पट्टी तो दीजिए, उसने कहा। यशोदा पट्टी लेकर आ गई। बोला, बांध दीजिए। यशोदा चुपचाप बांधने लगी, लेकिन बेचारी ठीक ठाक नहीं बांध सकी। निशिकांत ने उसके हाथ से लेकर स्वयं बांधते हुए कहा, देखिए ऐसे बांधते हैं। पट्टी लेते लेते उसका हाथ यशोदा के हाथ से छू गया। दोनों चौंक पड़े। यशोदा का मुंह लज्जा से लाल हो गया। बोली, चोट ज्यादा लगी है क्या? जी नहीं, इतनी ज्यादा नहीं है। डॉक्टर के यहाँ जाना होगा। हाँ, सवेरे से डॉक्टर के यहाँ जरूर ले जाइएगा। फिर कुछ क्षण के लिए वैसी ही शांति छा गई। यशोदा पट्टी बांधती रही और निशिकांत लालटेन के प्रकाश में कभी शारदा, कभी यशोदा और कभी कमरे को देखता रहा। दोनों सुंदर, स्वस्थ और सभ्य। कमरा साधारण मेज, कुर्सी, चारपाई, लालटेन, तस्वीरें, कैलेंडर, बक्स, अलमारी, ऐसे ही कुछ अल्लम गल्लम और थे। एकाएक यशोदा ने माँ के वाक्य को दोहरा दिया, आप बड़े दयालु हैं। निशिकांत ने अनसुना करके पूछा, आपके पिताजी हैं? नहीं। तो बड़े भाई परीक्षा देने लाहौर गए हैं। कब तक लौटेंगे?
एक हफ्ते में।
तब फिर आप डरिए नहीं, माँ शारदा को स्वयं डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगी, माँ इसे बहुत प्यार करती हैं। निशिकांत समझा, वो मुस्कुराया, शायद आपको नहीं करती। यशोदा फिर लाल हुई, पट्टी वो बांध चुकी थी। शारदा के गालों से आंसुओं को पोंछती पोंछती बोली, माँ का प्यार पार्थिव रूप है, प्यार के बिना माँ माँ नहीं रहती। अच्छा, क्या रहती है? निशिकांत चकित विस्मित मशीन की तरह पूछ बैठा। मैं नहीं जानती, यशोदा ने दृढ़ता से कहा। फिर पुकारा, माँ दूध हुआ तो जल्दी ले आना। ये कहती स्वयं उठकर यशोदा बाहर चली गई और निशिकांत के रहते फिर नहीं लौटी। दूध लेकर स्वयं माँ आई। निशिकांत ने कटोरा हाथ से लेकर शारदा को उठाया, पूछा, दर्द कम है ना?
हाँ,
बालिका ने दबे स्वर में कहा। ये लो दूध पी लो। शारदा ने दूध पी लिया और निशिकांत उठकर अपने रास्ते पर चला गया। जाते जाते कह गया, इसे उठाना मत, डॉक्टर के यहाँ गोद में लेकर जाना, देखना होगा कि हड्डी तो ठीक है।
हड्डी?
माँ कांप उठी, अरे जी नहीं, डरिए नहीं, टूटी नहीं है, फिर भी देखना होगा। और इसके बाद जब माँ शारदा को डॉक्टर के यहाँ ले जा रही थी तो वो फिर आ गया, बोला, लाइए मैं ले चलता हूँ। अरे नहीं बेटा नहीं, अरे लाइए ना। यहीं तक नहीं, इसके बाद जब तक यशोदा का भाई लाहौर से नहीं लौटा तब तक निशिकांत बराबर दो दफा उनके घर आता जाता रहा। माँ ने हर बार उसे कृतकृत्य कर देखा, हर बार उसकी आंखों में आंसुओं के साथ आशीर्वाद बरसे। यशोदा से भी उसका परिचय बढ़ा, हृदय खुले, लज्जा दूर हुई। लेकिन जब भी वो यशोदा को देखता, उससे बातें करता, तो वो इस बात को नहीं भुला पाता कि यशोदा सुंदर है, युवती है। लेकिन फिर तर्क करता, सुंदर है, युवती है, तो फिर क्या? सौंदर्य और यौवन का उपयोग तो उसके भोग में ही है। लेकिन तू भोगने वाला कौन है?
मैं पुरुष?
हाँ, मैं पुरुष, वो नारी। छी छी, तब उसे कोई धिक्कारने लगता, तू कितना कमीना है। इतने पवित्र वातावरण में, जहां माँ आंसुओं से प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा करती है, जहां तू स्वयं अपनी सेवा में भावुक प्रेम और सहानुभूति का परिचय देता है, वहां भी तू? निशिकांत तब कांप उठा, उसका अंतर अकुला-अकुलाकर हाहाकार करने लगता। तभी यशोदा कहती, सभी आदमी एक जैसे नहीं होते, देखिए आप भी तो हैं।
जी हां, एक मैं भी हूं।
निशिकांत इस तरह बोलता कि यशोदा चौंक कर देखती और फिर वो कहता, अच्छा तो अब मैं जा रहा हूं। जी नहीं, खाना खाकर जाइए, अब नहीं। अच्छा, आपकी पत्नी कब तक आएंगी? यही एक दो महीने में, तब मैं आपके घर आऊंगी। निशिकांत एकदम कह उठता, अभी चलिए ना।
अब?
हाँ, अब क्या वहां दीवारों से बातें करूंगी? अरे मैं तो हूं, कहकर वो कांपता, यशोदा चौंकती, छी छी, ये कैसा अलगाव, कैसा विभेद, कैसा पागलपन। लेकिन यशोदा परिस्थिति को संभाल लेती, कहती, अरे आप यहां तो आते ही हैं, ये भी तो आपका ही घर है। सच, वो भी संभालता। तभी माँ आकर कहती, कल रतन आ जाएगा, तुम जरूर आना, खाना भी यहीं खाना, समझे। निशिकांत रोज आता था, उस दिन भी आया, खूब बातें की और चला गया। सबको लगा कि ये निशिकांत बहुत दिन से उनका जाना पहचाना, उन्हीं में से का कोई एक, उन्हीं के परिवार का एक अविच्छिन्न अंग मात्र है। लेकिन इसी सीमा पर आकर निशिकांत एकदम पीछे लौट गया,
दिन पर दिन बीतने लगे। वो फिर यशोदा के घर नहीं गया। ये बात नहीं कि यशोदा उसे मिली नहीं, सड़क पर अब भी वो उसे नजर आ जाती थी, अब भी हाथ जोड़कर नमस्ते करती थी, अक्सर पूछ लेती है, आप आए नहीं, माँ आपको बहुत पूछ रही थी। निशिकांत कह देता, आजकल ऑफिस में काम ज्यादा है ना, फुर्सत नहीं मिलती, किसी और दिन आऊंगा। जैसे जैसे दिन बीते, जैसे जैसे वो यशोदा की तरफ खींचा, वैसे वैसे उसके भीतर का संघर्ष भी तेज होता चला गया। उसने दृढ़ होकर कहा, नहीं अब मैं वहां नहीं जाऊंगा।
क्यों नहीं जाएगा, मेरा उससे क्या संबंध है?
है क्यों नहीं, तू पुरुष वो नारी।
लेकिन वो मुझे भाई कहती है।
तब कोई हंस पड़ता। प्रेयसी होने से पहले हर एक नारी बहन होती है।
नहीं नहीं
नहीं कैसे, माँ पत्नी प्रेयसी बहन पुत्री, ये सब नारी जीवन के भिन्न भिन्न सीमाओं के संकेत और चिन्ह मात्र हैं।
ये ठीक हो सकता है, परंतु सीमा और मर्यादा का उल्लंघन करने वाले पापी होते हैं।
हाँ हाँ, वो एक अट्टहास करता जान पड़ता,
तो तुम पाप को पहचानते हो?
बहन को प्रेयसी बनाना पाप है, यौवन की पुकार पाप है।
हाँ हाँ, वो तेज होता, ये सब पाप है।
दोनों हाथों से मुंह ढककर क्षण भर के लिए वो सोचता और फिर उसी तेजी से कहता, कल को तुम माँ को प्रेयसी बनाने लगोगे क्या? आवाज उसे और भी चिढ़ाती, अरे तू मूर्ख है, प्रेयसी के यौवन सौंदर्य कामना और वासना का पूर्ण उपभोग करने के बाद ही माँ ममता और स्नेह के आंसुओं का वरदान पाती है। तब माँ में प्रेयसी बनने की ना तो योग्यता रहती है और ना उसे जरूरत होती है।
निशिकांत आगे सोचने में असमर्थ, झुंझलाहट और पराजय से हारा थका सा, सब कुछ भूलकर पुस्तकों में शांति पाने की चेष्टा करता, परंतु मन उसे पढ़ने नहीं देता। कभी विद्रोह, कभी वासना, और कभी स्वयं यशोदा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरी ओर देखो, क्या मैं सुंदर हूँ, क्या मैं मोहक हूँ, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, मैं भी तुम्हें देखा करती हूँ, तुम भी सुंदर हो।
तभी निशिकांत शून्य में ताकता, खुशी के मारे हंस पड़ता,
सच, और फिर दूसरे ही क्षण पुस्तक बंद करके उठ जाता। जीवन स्वयं एक सुंदरी के समान है, किसी उपन्यास में पढ़ा ये वाक्य उसे याद आ जाता, और इसीलिए उस दिन लैम्प पोस्ट के नीचे जब तक बारात के कारण बहुत सी मोटरों व तांगों ने उसका रास्ता रोक लिया था, यशोदा को देखकर उसने ये निश्चय कर लिया था कि आज वो जरूर प्रेम की भीख मांग कर रहेगा।
यशोदा बोली, आप आए नहीं भाई साहब, माँ याद करती हैं।
माँ याद करती हैं, उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम नहीं करती?
यशोदा लाल होकर रह गई। निशिकांत ने कहा, आज रात को जरूर आऊंगा,
राह देखोगी?
आएंगे तो राह क्यों नहीं देखूंगी। ठीक, घर जाकर निशिकांत ने इसके बाद निश्चय किया, आज वो जरूर यशोदा के घर जाएगा और कहेगा, यशोदा तुम सुंदर हो। वो कहेगी, सच?
बेशक,
मैं तुम्हें रात दिन देखते रहना चाहता हूं,
तो देखा करो ना।
सच?
हाँ, मैं भी तुम्हें देखते रहना चाहती हूँ।
जैसे जैसे अंधकार बढ़ता गया, निशिकांत उसकी इस तरह की कल्पनाओं के मनमोहक चित्र बनाता रहा। इसी रंग में डूबे डूबे उसने खाना बनाया और खाया, ऊपर जाकर स्विच दबाकर कमरे को प्रकाश से भर दिया। इसके बाद गुनगुनाता हुआ इधर से उधर, उधर से इधर कमरे में ही चहलकदमी करने लगा। पास के मकान से धीमी धीमी आवाज आकर ऊपर फैलती जा रही थी। कभी कोई बड़े जोर से बूटों की आवाज करता हुआ निकल जाता था। बाहर छत पर खिड़की से होकर प्रकाश की कई किरणें इस तरह चित्त लेट गई थीं कि जैसे प्राण निकल जाने पर किसी सुंदरी का शरीर लेट जाता है। लेकिन निशिकांत सब ओर से आंख कान बंद किए अपनी प्रेयसी से मनमानी बातें करता तन्मयता में डूबा था।
यशोदा, कैसा आश्चर्य, ये सब हम आज से पहले क्यों नहीं जान पाए?
क्या यही कि हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं?
प्रेयसी प्रेम बोलना नहीं जानता। बेशक वो तो सदा मौन रहता है ना, और मौन वाणी से अधिक शक्तिशाली क्या होता है। निशिकांत प्रभावित हो उठा। यशोदा, तुम रूपवती, तुम बुद्धिमती और तुम कवि, काश कि मैं कवि होता, चित्रकार होता, सदा तुम्हें अपने सामने बिठाए चित्र बनाया करता, कविता लिखा करता। तो अब लिखो आप। हाँ, जरा समीप आओ, मेरी आंखों में देखो, कितना मत भरा है, क्या वो तुम्हें कवि नहीं बना देगा। आह यशोदा, मेरी यशोदा, नहीं दूर ना हटो, पास आओ और पास। हाँ अब देखो, ये देखो, क्या ये सब तुम्हें चित्र बनाने के लिए निमंत्रित नहीं कर रहा। निशिकांत जैसे किसी अज्ञात प्रभाव से दबता गया। प्रेयसी के नेत्रों के मद ने, होठों की सुरा ने, भुजाओं के बंधन ने उसे पार्थिव से अपार्थिव बना दिया। वो उड़ती वायु के समान बोला, प्रेयसी प्राण वल्लभ है, मैं कवि, मैं चित्रकार, और तुम कविता, तुम चित्र। नहीं नहीं, मैं कविता का शब्द मात्र, चित्र का रंग केवल। धीरे धीरे वाणी लुप्त होती गई, गति में स्थिरता आने लगी। निशिकांत के अपार्थिव रूप ने प्रेयसी के काल्पनिक सौंदर्य शरीर को अपनी भुजाओं में बांधा, कसा, चाहा कि ओठों से ओठ मिलाए। प्रेयसी उनकी भुजाओं में इस तरह लुढ़क गई जिस तरह नींद आने पर शरीर लुढ़क पड़ता है। निशिकांत ने सोचा, ये निद्रा, ये मत भरी निद्रा, ओ प्रेयसी, ये तुम्हें शत बार सहस्र बार सौंदर्यमय बना रही है। अनुपम सुंदरी, तुम स्वयं सौंदर्य हो। और उसने अपने ओठों को धीरे धीरे उसके रक्त वर्ण मधुर ओठों पर, वो कांपा, चौंका, भूकंप का सा धक्का लगा। यशोदा, नहीं नहीं, तुम रजनी हो, ओ तुम तो, ओ मैं तुम। निशिकांत पागल सा शून्य में ताकने लगा, लेकिन वहां यशोदा न थी, न थी रजनी। केवल प्रकाश से जगमगाते कमरे में निशिकांत कल्पना की दुनिया में डूबा डूबा दीवाल से सटा खड़ा था, और ठीक उसके सामने एक चित्र जिसमें उसकी पत्नी रजनी लज्जा से दबी दबी कुर्सी पर बैठी थी, और ठीक उसके सामने प्रफुल्ल मुद्रा में ताकता खड़ा था वो स्वयं। तब उसका मन ग्लानि से भर आया, इतनी तेजी से कि उसकी आंखों में धुंधलापन छा गया। उसके मस्तिष्क में एक ऐसा कड़वा विचार आकर जम गया कि सामने पड़े हुए पलंग के बिस्तरे को उठाकर जोर से उसने कोने में फेंक दिया। दोनों हाथों से मुंह छिपाकर खोड़े पलंग पर ही लेट गया। लेकिन उसकी आंखों ने ना तो देखना छोड़ा, ना मस्तिष्क ने सोचना। उसकी आंखें अब भी एक प्रेयसी और उसके प्रेमी की राह देख रही थी। अंतर केवल इतना कह रहा था कि वो प्रेयसी यशोदा ना होकर रजनी थी, और वो प्रेमी निशिकांत ना होकर एक अज्ञात युवक था जिसे उसने कभी नहीं देखा था। वो बड़े जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं, ये सब कभी नहीं हो सकता, ये झूठ है। क्या झूठ है? रजनी किसी से प्रेम नहीं करती, वो मेरी है, मेरी। और यशोदा, यशोदा नहीं, मैं यशोदा को नहीं जानता, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है।
बुजदिल,
वो फुसफुसाया,
हाँ तुम बुजदिल, तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी किसी की प्रेयसी ना बने, और ना सारे संसार की सुंदरियां तुम्हारी प्रेयसी या तुम्हारी अंकशायनी हो जाएं।
निशिकांत को किसी ने झंझोड़ डाला, वो हाँफता हाँफता बोला, लेकिन लेकिन तुम हो कौन?
निशिकांत,
आवाज गंभीर होकर बोली, निशिकांत। निशिकांत आश्चर्य से प्रतिहत बड़बड़ाया, और मैं?
तुम निशिकांत का पार्थिव रूप।
उसे लगा जैसे कोई अव्यक्त अमूर्त पदार्थ सा आकर उसके शरीर में इस तरह समाता जा रहा है जिस तरह शून्य वातावरण में वायु आकर फैल जाती है। तब उसने भयातुर, लज्जित, लांछित की तरह आंखों को और जोर से दबा लिया, पैरों को और भी जोर से समेट लिया, और गुड़मुड़ होकर इस तरह लेट गया जैसे अपने पार्थिव शरीर को शून्य में एकाकार करना चाह रहा हो।